नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन है, हिमाद्री संकल्प और उससे जुड़े अनुशासन। ये उद्बोधन श्रावणी पर्व के अवसर पर दिया गया था।
जी हाँ, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि पूज्य गुरुदेव वो हमेशा पर्व त्योहारों के पीछे जो असली मतलब छिपा होता है ना, उसे सामने लाते थे। उनका मानना था कि ये त्योहार सिर्फ रस्में निभाने के लिए नहीं है, ये तो वो अवसर है जो इंसान को ऊपर उठाते हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं उनसे लड़ने की ताकत देते हैं।
बिल्कुल।
और श्रावणी पर्व, जिसे यज्ञोपवीत पर्व भी कहते हैं हम लोग, वो तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यज्ञोपवीत, हाँ, जनेऊ। अक्सर लोग इसे बस एक धागा ही समझते हैं, लेकिन जैसा पूज्य गुरुदेव बताते हैं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है ना?
निश्चित रूप से। ये धागा तो सिर्फ एक प्रतीक है, प्रतीक है द्विज बनने का।
द्विज?
देखिए, एक जन्म तो माँ बाप से मिलता है, वो तो शारीरिक है, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि असली जन्म तो तब होता है जब हम अपनी जो पशु वाली आदतें हैं ना,
पशु वाली आदतें, जैसे
बस खाना, सोना, डरना, बच्चे पैदा करना, इनसे ऊपर उठते हैं जब हम इंसानियत को अपनाते हैं, मतलब विवेक, संयम, दूसरों का दर्द समझना। तो यज्ञोपवीत पहनना एक तरह से इसी दूसरे जन्म का संकल्प लेना है, आध्यात्मिक और वैचारिक जन्म का। ये याद दिलाता है कि भाई, पशु स्तर से ऊपर उठना है, देवत्व की ओर जाना है।
पशुता से मनुष्यता की ओर, ये बहुत गहरी बात है। पूज्य गुरुदेव ने इंसान और पशु के बीच ये जो मानसिक फर्क है, इसे और कैसे समझाया है?
देखिए, शरीर के फर्क तो साफ है, हमें वाणी मिली है, सोचने समझने की बुद्धि है, ये हाथ हैं कुछ करने के लिए, दिमाग भी विकसित है, पर पूज्य गुरुदेव का जोर मानसिक स्तर पर था। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान, शरीर से तो इंसान है पर जीता सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए है, मतलब पेट पालना और बस परिवार बढ़ाना, जिससे उन्होंने कहा पैसा और औलाद का स्वार्थ, तो वो मानसिक रूप से नर पशु जैसा ही है।
अच्छा।
हाँ, क्योंकि जानवर भी तो मूल रूप से यही दो काम करते हैं। तो यज्ञोपवीत हमें इसी नर पशु वाली हालत से ऊपर उठकर असल इंसान बनने की प्रेरणा देता है, अनुशासन सिखाता है।
तो फिर ये असल इंसान बनने का रास्ता क्या है? उद्बोधन में 10 स्नान और हिमाद्री संकल्प की बात आती है, इनका क्या महत्व है यहाँ?
हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण साधन बताए हैं गुरुदेव ने। 10 स्नान का मतलब सिर्फ पानी से नहाना बिल्कुल नहीं है।
अच्छा।
जी, हमारी 10 इंद्रियां है ना, 5 जिनसे हम काम करते हैं, 5 जिनसे हम जानते हैं, और हमारे प्राण ऊर्जा के भी 10 रूप माने गए हैं। तो जाने अनजाने में इनसे बहुत सी भूलें होती हैं, कुछ मैल, कुछ गलतियां जमा हो जाती हैं। 10 स्नान इन सब की शुद्धि का प्रतीक है, ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है, अंदर की सफाई है, मानसिक आत्मिक सफाई।
समझ गया। और हिमाद्री संकल्प, ये नाम सुनने में बड़ा दृढ़ लग रहा है।
बिल्कुल। हिमाद्री का मतलब है सोने का पर्वत, यानी हिमालय। जैसे हिमालय एकदम पक्का अटल खड़ा है, वैसा ही ये संकल्प है। ये एक पक्की प्रतिज्ञा है कि हम अपने चिंतन यानी अपनी सोच और अपने कृत्य यानी अपने काम दोनों को पवित्र रखेंगे, अच्छा बनाए रखेंगे। हम अपने अंदर जो बुराइयां हैं, गलत आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, उनसे लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी में खुद पर अनुशासन रखने का पक्का इरादा है, जैसे अपने अंदर की कमजोरियों से रोज लड़ाई लड़नी है।
अब आमतौर पे तो लोग इन दोनों को एकदम उल्टा समझते हैं।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव यहाँ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अनोखी दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा स्वार्थ वो नहीं जो हम समझते हैं, मतलब पैसा जमा करना या मजे करना, असली स्वार्थ है अपनी आत्मा को उन्नत करना, खुद को बेहतर बनाना, जिससे अंदर से एक शांति, एक खुशी मिले, जिसे उन्होंने स्वर्ग कहा है, और ये मिलता है अच्छा जीवन जीने से, सदाचार से।
अच्छा।
और परमार्थ, परमार्थ है भगवान की इच्छा पूरी करना, ये दुनिया जो एक बगीचे की तरह है, इसे और सुंदर बनाना, मतलब दूसरों के लिए दया, उदारता, सेवा का भाव रखना, समाज की भलाई के लिए कुछ करना। और सबसे गजब की बात यह है कि गुरुदेव के अनुसार ये दोनों जुड़े हुए हैं।
जुड़े हुए हैं कैसे?
ऐसे कि जब आप अच्छा जीवन जीकर अपना सच्चा स्वार्थ साधते हैं ना, मतलब खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने आप ही परमार्थ के रास्ते पर चलने लगते हैं। एक अच्छा सुसंस्कृत इंसान तो वैसे भी समाज के लिए फायदेमंद ही होता है ना।
हाँ, हाँ। हाँ ये तो है, ये तो स्वार्थ की परिभाषा ही बदल गई। अच्छा, उद्बोधन में ऋषि पूजन और रक्षाबंधन का भी जिक्र है, इनका इस पूरी प्रक्रिया से क्या ताल्लुक है?
ये दोनों चीजें अनुशासन और समाज की व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऋषि पूजन का मतलब है कि जीवन में हमें किसी ज्ञानी, अनुभवी, अनुशासित मार्गदर्शक की जरूरत है, ऋषि जैसे व्यक्ति का साथ। सिर्फ श्रद्धा रखना काफी नहीं, उनके बताए अनुशासन को मानना भी है। स्वाध्याय करना मतलब उनके ज्ञान को पढ़ना, समझना, और सत्संग यानी उनकी संगति से प्रेरणा लेना। ये बाहरी अंकुश हमें सही रास्ते पर रखने में मदद करता है।
और रक्षाबंधन?
रक्षाबंधन के दो पहलू बताए हैं गुरुदेव ने। एक तो जो हम सब जानते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है, पर गुरुदेव इसे नारी के सम्मान और उसके स्वावलंबन की रक्षा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। मतलब नारी को इज्जत मिले, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, खासकर आर्थिक रूप से। ये पुरुष समाज को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है।
ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।
बिल्कुल। और दूसरा पहलू है पुरोहित या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के बाकी लोगों को, यजमानों को रक्षा सूत्र बांधता है। ये आपसी सुरक्षा का और नैतिक सामाजिक अनुशासन में बंधने का प्रतीक है कि हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। ये समाज के लोगों का एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होने का वचन है। तो ये सिर्फ धागे नहीं है, ये व्यक्ति और समाज की उन्नति और सुरक्षा के सूत्र हैं।
तो सार ये हुआ कि श्रावणी पर्व और यज्ञोपवीत ये सिर्फ कुछ धार्मिक क्रियाएं भर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो जीवन के ऊंचे आदर्शों को अपनाने का एक पूरा खाका है, जैसे आत्मसुधार, पक्का इरादा, इंद्रियों पर काबू, अनुशासन, सेवा और स्वार्थ परमार्थ का सही संतुलन।
बिल्कुल सही समझा आपने। पूज्य गुरुदेव का पूरा जोर इसी बात पर है कि हम इन प्रतीकों के पीछे जो असली बात है उसे समझें, और सिर्फ समझें नहीं, उसे अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में लाएं। सिर्फ रस्म निभा देने से न किसी व्यक्ति का भरा होगा न समाज का। तरक्की तो तभी होगी जब ये संकल्प, ये अनुशासन हमारे रोज की जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। यज्ञोपवीत कले में पहनना इसी बात को रोज याद दिलाने का एक तरीका है।
और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए आज एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जिस आत्मनिरीक्षण, संकल्प और अनुशासन की बात कही है, क्या हम उसे केवल पर्व के दिन याद करते हैं या उसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने का वाकई कोई प्रयास कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।